कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन मन धीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Thank you. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radha. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Garanitai, 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 Jaya Garanitai. Nitai Gaurariba, Riba, Lariba, Haribo, Nitai Gaurariba. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Śrīla Prabhupāda ki jai. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashya Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishikim Om Gyat Virandasya Gyananjana Shalakaya Shakshuran Miritam Yena Tatmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishram Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurav Shri Yudhavada Kamalam Shri Guran Vaishyamamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vadam Sagana Lalita Shri Vishakanvitamsya Namaom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Namaom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Shri Vashabhanavi Devi Daitaya Kripabde Krishna Sambandha Vijyana Dayine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani ಶ್ರೀಮೂರ್ತಯೇ ದೀನತಾರಿಣೆ ರೂಪಾನುಗಾ ವಿರುದ್ಧಾಪ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ವಾಂತಹಾರಿಣೆ ನಮೋ ಗೌರಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ವಿಪ್ರಲಂಬಾರಸಾಂಬೋಧೆ ಪಾದಾಂಬುಜಾಯತೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾಮಿನೆ ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ರೂಪಾನುಗಾವರಾಯತೆ ಗೌರಾವಿರ್ಭಾವಭೂಮೇಸ್ವಂ ನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯಃ ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಯತೇ ನಮಃ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಧನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೌ ದೀನಬಂಧೌ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಯತಾಂ ಸುರತೌರ್ಭಂಗುರ್ ಮಾಮಂದ ಮತೇರ್ಗತಿ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವಾಪದಾಂಬೋಜೌ ರಾಧಾಮದನ ಮೋಹನೌ ದಿವ್ಯವೃಂದಾರಣ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದಃ ಶ್ರೀಮದ್ರತ್ನಾಕಾರ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾಶೀಲ ಗೋವಿಂದದೇವೌ ರಷ್ಟ್ರಾಲಿಭಿ ಸೇವ್ಯಮಾನಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸರಸಾರಂಭಿ ವಂಶೀವಟ ತಟಸ್ಥಿತಃ ಕರ್ಷಂ ವೇಣುಸನೇರ್ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ರೀಯಸ್ತುನಃ ರಕ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಆಜ್ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಹೇ ಆಜ್ ಹಮ್ನೆ ಸೋಚಾ ವಿಶೇಷ ತರಿಕೆ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಕಿ ಜೊ ಸ್ತುತಿಯಾಂ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕಿಯಾ ಜಾಯೆ ಜಹಾಂ ಥೋಡಾ ಸಾ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಪಡೇ ಯಾ ಉಚಿತ ಸಮಜೆ ಉಸ್ಕೋ ವರ್ಣನ್ ಕರನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ಯಾಕೆ ಕುಜ ಕಾಗಜ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಪಹಲಾ ಜೊ ಸ್ತುತಿಯಾಂ ಹೇ ದೋ ಸ್ತುತಿಯಾಂ ವೋ ಲಿಖಾ ಗಯಾ ಹೇ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ದ್ವಾರಾ. ಪಹಲೆ ಹಮ್ ಉನ್ ಸ್ತುತಿಯೋ ಕೋ ಥೋಡಾ ಚರ್ಚಾ ಕರನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ ಅನ್ಯ ಜೋ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇ ಔರ್ ಶ್ರೀ ಅಹೋಬಳ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಹೇ ಔರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ರಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಾ ಕರುಣಾರಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಈ ದೋನೋ ಏಕಿ ನಾಮ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಏ ಇಸ್ಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕರನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಭಕ್ತಿನೋ ಠಾಕೂರ್ ನೇ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಭಜನ್ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಹೇ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಭೀ ಅಂತ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ತೋ ಪಹಲಾ ಹೇ ನರಸಿಂಹ ನಕ ಸ್ತುತಿ. ಅಂತಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗ ಮಾಧ್ಯತ್ಕತ ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿಪಾಟನಾದಿಕ ಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯುಧ ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಸ್ಯ ಸತತ ಸುನಕರಾಧಾರಿತಾರಾತಿದೂರ ಪ್ರದ್ವಸ್ತದ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತ ಮನಸ ಭಾವಿತ ನಾಕಿ ವೃಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋ ವಿಕಲಯನ್ ನೈವೇಶ ದಿಸ್ತೇ ಸಮಂ ಪಶ್ಯಾಮುತ್ತಮ ವಸ್ತು ದೂರಕರತೋ ಹಸ್ತಂ ರಥೋ ಯೋಷ್ಟಮಃ ಯದ್ರೋಶೋತ್ಕರ ದಕ್ಷ ನೇತ್ರ ಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಂತೋದಿತಾಗ್ನಿ ಸ್ಪೃತ್ಕದ್ಯೋತೋಪಮ ವಿಷ್ಪುಲಿಂಗ ವಸಿತ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಶಕ್ರೋತ್ಕರಾ. ಈ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಲಿಖಾವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇ ಅಸ್ತಿತ್ ಮೇ ಉನ್ಕೆ ಏಕ್ ಶಿಷ್ಯ ತೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿನ್ಕಾ ನಾಮ ತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ. ತೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ
को परास्त किया था श्रीपाद भद्राचार्य ने। श्रीकृष्ण पंडिताचार्य कासरगोड़ में एक जगह है, विश्व मंगला करके एक मंदिर है, जहां प्रचार करने से पहले श्रीपाद मध्वाचार्य विष्णु मंगल विग्रह का आशीर्वाद लेके दक्षिण भारत की ओर प्रचार करने गए थे। उस समय नजदीक में उधर एक बड़े विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था त्रिक्रम पंडिताचार्य। तो त्रिक्रम पंडिताचार्य के साथ श्रीपाद मध्वाचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। त्रिक्रम पंडिताचार्य उस समय मायावादी पंथ में थे, यानी वो अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार करने वाले थे, वैष्णव सिद्धांत वो मानते नहीं थे। तो करीबन 15 दिन तक पूरा चर्चा होने के बाद वो परास्त हो गए। श्रीपाद मध्वाचार्य के वैष्णव सिद्धांत को स्वीकार किया, तो बाद में मध्वाचार्य के शिष्य बने। एक बार ऐसा हुआ, मध्वाचार्य एक बार अचानक बहुत भावपूर्वक ऐत्रेय उपनिषद के ऊपर वर्णन करते हुए अचानक वो उडुपी मंदिर के अंदर प्रवेश किए। तो उधर त्रिविक्रम पंडिताचार्य ने देखा कि अंदर क्या कर रहे हैं मंदिर के अंदर। तो त्रिविक्रम पंडिताचार्य आश्चर्यचकित हो गए। अंदर उन्होंने देखा कि हनुमान, भीम और मध्व तीन रूपों में उडुपी कृष्ण का सेवा हो रहा है। कैसे सेवा हो रहा है? हनुमान जी साथ सेवा कर रहे थे रामचंद्र का, मध्वाचार्य सेवा कर रहे थे हम इनका, वायुदेव सेवा कर रहे थे, भीम सेवा कर रहे थे कृष्ण का, और श्रीपाद मध्वाचार्य के रूप में सेवा कर रहे थे व्यास देव का। तो ये तीन रूपों में, तीन रूपों में मध्वाचार्य को देख के आश्चर्यचित होके, जो तीनों वायु के अवतार होने की वजह से त्रिविक्रम पंडिताचार्य ने एक स्तुति लिखा था जिनका नाम है वायु स्तुति। तो वायु स्तुति का वर्णन करने के बाद जब उन्होंने दिखाया कि मध्वाचार्य को मैंने ऐसा स्तुति किया है, लिखा है, मध्वाचार्य ने कहा गुरु जो है कभी भगवान से अलग नहीं हो सकते, या भगवान भी गुरु से अलग नहीं हो सकते, इसलिए मेरा तो स्तुति किया है लेकिन मैं साथ में भगवान की भी स्तुति जोड़ना चाहता हूं। तब उन्होंने क्या किया, ये वायु स्तुति, ये नरसिंह स्तुति, नक स्तुति, इसका उच्चारण किया श्रीपाद मध्वाचार्य ने कहा ये जो वायु स्तुति है उसके पहले ये गाया जाएगा और वायु स्तुति के अंत में भी गाया जाएगा, जिसके द्वारा ये वायु स्तुति पूर्ण होता है। और तब से उनका नाम पड़ा है हरि वायु स्तुति। मध्व संप्रदाय में खास करके ये हरि वायु स्तुति को रोज उनके भक्त उच्चारण करते हैं, बहुत शक्तिशाली ये स्तोत्र है। अभी आप इधर जान सकते हैं कि किस प्रकार श्रीपाद मध्वाचार्य इधर इस स्तोत्र में सबसे पहला कहते हैं पांतस्मान, अस्मान पांतः, अस्मान मतलब हमको, पांतः मतलब आप रक्षा कीजिए। तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? इधर आपको तीसरा लाइन में श्रीमत कंठीर्यवास्य प्रतत सुनखरा, सुनखरा नखा मतलब उनके नाखून, ये प्रार्थना हो रही है भगवान नरसिंह देव की नाखून के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं। पांतः आप हमको रक्षा कीजिए। भगवान के जो नाखून है वो कैसा है? सुनखरा, सु ये जो सु शब्द हैं उनके अनेकों अनेक अर्थ होते हैं, भले ही अनेकों अनेक अर्थ हैं, इधर उसका अर्थ ये है कि पूर्ण, पूर्ण है। क्यों? वैसे सु जो है सुंदर भी है और साथ साथ में पूर्ण भी है। तो प्रश्न उठाया जा सकता है, आप नरसिंह देव से क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे हो, नाखून से क्या प्रार्थना कर रहे हो? कोई नाखून से कोई प्रार्थना करनी होती है? नाखून तो ऐसी चीज है जिसे हमको थोड़ा बढ़ गया तो काट के निकाल देंगे, काटने के बाद उसको अशुद्ध माना जाता है। लेकिन इधर श्रीपाद मध्वाचार्य नाखून का, भगवान के नख का स्तुति कर रहे हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं। तो नाखून थोड़ी ना प्रार्थना करने के योग्य है, इसलिए कहा गया है सुनखरा। सु शब्द का अर्थ है पूर्ण, भगवान से उत्पन्न हुआ प्रत्येक वस्तु पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवत संबंधित प्रत्येक वस्तु पूर्ण है। मान लो कि किसी ने आपको महाप्रसाद दिया, उसने क्या किया, कहीं अवबेलम से या तिरुपति से महाप्रसाद आया, लड्डू प्रसाद आया, वो थोड़ा सा लड्डू का एक टुकड़ा एक दाना निकाल के महाप्रसाद है, उसने कहा मुझे पूरा लड्डू दो। तो चाहे वो छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो या पूरा लड्डू क्यों ना हो, दोनों महाप्रसाद है कि नहीं। तो उतना ही कृपा आपका पूरा लड्डू खाने से जितना मिलता है, उतना ही भगवान का जो कृपा है वो थोड़ा सा अंश खाने से मिल जाता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो भगवान पूर्ण होने की वजह से हमारे जीवन में सारे अपूर्णता का अनुभूति केवल भगवत पूर्णता को अनुभव नहीं करने की वजह से है। हम अपूर्णताओं को अनुभव करते हैं, वो नहीं है, ये नहीं है, वो होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वो इसलिए है क्योंकि भगवत पूर्णता, भगवान पूर्ण है, पूर्ण की अपूर्ण अनुभूति की वजह से हमारे जीवन में हर प्रकार की अपूर्णता को अनुभव करते हैं। पूर्ण की पूर्ण अनुभूति का क्या अर्थ क्या है, ये समझना कि पूर्ण पूर्ण है, उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु पूर्ण है। नरसिंहदेव को या उनके हाथ नरसिंहदेव है, उनका पैर भी नरसिंहदेव है, यानी जितने भी शक्ति पूरे नरसिंहदेव में है, उनके हर एक अंग में है, उनके प्रत्येक नाखून में है। इसलिए पूर्ण कार्य करने के लिए भगवान के अंश भी आ सकते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो सकते हैं, भगवान का आयुध भी काफी है, भगवान का केवल इच्छा मात्र काफी है। इसलिए सुनकरा शब्द इस्तेमाल किया गया, सु मतलब पूर्ण है, भगवान के जो नाखून हैं वो नरसिंह देव ही है, साक्षात भगवान है। ऐसा ही कहा जाता है जो ये जो सुदर्शन चक्र है वो कोई और नहीं है बल्कि भगवान नरसिंह देव के नाखून का अवतार है, ऐसा भी कहीं माना जाता है। इसलिए दक्षिण भारत में खास करके आप जब नरसिंहदेव मंदिर में जाएंगे, जैसे मंदिर का दर्शन काल आगे से होता है, वो नरसिंहदेव का मंदिर प्राय मंदिरों में आगे से भी होता है पीछे से भी होता है, उनको सुदर्शन नरसिंह कहा जाता है। आगे से नरसिंहदेव का दर्शन होगा, पीछे जाके देखेंगे सुदर्शन का दर्शन होगा। ऐसा कहा जाता है जब भगवान सुदर्शन चक्र को फेंकते हैं अस्तित्व में, वो सुदर्शन चक्र कोई और नहीं है, नरसिंहदेव है, इज नरसिम्हा हिमसेल्फ। तो इसलिए भगवान के जो नाखून है या नरसिंहदेव के नाखून है वो नरसिंहदेव ही है, वो भगवान ही है, भगवत तत्व है, कोई वो जीव तत्व नहीं है, इसलिए उनको पूर्ण कहा गया है। तो पूर्ण, एक वस्तु को पूर्ण तभी कहा जाता है जब पूरा काम कर देता, हमारा पूरा काम कर देना का अर्थ क्या है कि हमारे जो अवांछित चीजें हैं हमारे हृदय में, जो हमको अनिष्ट चीजें हैं उसको दूर करना है, जो वांछित चीजें हैं वांछित वस्तु हैं उसको प्रदान करना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा क्या चाहिए बोलो, आप बोलो पूरा लिस्ट दोगे मुझे ये चाहिए, सब दे दिया, लेकिन जो चाहिए नहीं है, जो आपके मन में आपके जीवन में ऐसी चीजें जो आप चाहते नहीं है, वैसे चीजों को दूर नहीं करेगा तो क्या फायदा। मान लीजिए कोई किसी का बहुत इच्छा है कि मुझे बहुत स्वादिष्ट खाने को प्राप्त हो जाए, लेकिन आपको जो व्यक्ति ने प्रदान करके दे दिया, लेकिन बहुत सारे मिठाई रखा है, बहुत सारी चीजें रखा है, लेकिन आपका तबीयत खराब है, तो क्या फायदा उस सब चीज का, है कि नहीं। तो कि अगर कोई वस्तु को आपको पूर्ण तरीके से भोगना है या आपको उसका आनंद लेना है, दोनों चीजें होना चाहिए, अवांछित चीजों से दूर होना है और वांछित वस्तु की प्राप्ति होना है। तो इसलिए ये नाखून भगवान के ऐसे हैं कि अवांछित चीजों को दूर करने के साथ साथ में वांछित वस्तु को ही प्रदान करने वाला है। भक्तों के लिए अवांछित वस्तु क्या है, अवांछित चीज क्या है, मीन्स अनवांटेड थिंग क्या है, अनर्थ क्या है, वो है हृदय में रहने वाले काम क्रोध मोह मद मात्सर इत्यादि। इसलिए श्रीपाद मध्वाचार्य सूत्र में कहते हैं पांतस्मान पुरुहूत वैरी, पुरुहूता करते पुरु इंद्रदेव का नाम है, पुरंधर, पुरु पुरुहूत, हूत मतलब बहुत सारे यज्ञ करने वाले यानी इंद्रदेव, वैरी मतलब क्या है उनके दुश्मन, पुरुहूत वैरी यानी इंद्र के जो दुश्मन है वो कौन है इंद्र के दुश्मन, हाँ असुर लोग है। कौन है असुर, वो कितने बलवान है, पुरुहूत वैरी बलवान मातंग माध्यत घटाह, मातंग मातंग का अर्थ है जो हाथी, हाथी किस प्रकार के हाथी हैं, मातंग मध्यत घटाह जो मदमत हाथी है उस प्रकार के है, मातंग माध्यत घटा, घटा मतलब उनके सर जो जो कुंभ जैसा है, मातंग माध्यत घटाह कुंभोचाद्री, कुंभोचाद्री उनके जो सर है उनके असुरों के सर कैसा है, बड़े बड़े मटके जैसा है, जैसे एक पहाड़ है पहाड़ का ऊपर शिखर होता है उस प्रकार के इतने बड़े बड़े हैं। और विपाटनादिकपटु प्रत्येक वज्रायुधा, विपाटनादिकपटु प्रत्येक वज्रायुधा, आपके नाखून इतने समक्ष है कि ऐसा नहीं कि पांच उंगलियों में पांचों नाखून होते हैं, दस उंगली में दसों नाखून होता है, ये प्रत्येक नाखून जो है वो वज्रायुधा वज्रायुध के बराबर है। यानी इंद्र के पास अगर एक ही वज्रायुध है तो नरसिंहदेव के पास दस वज्रायुध है, ऐसे उनके पास अनेकों हाथ है, यानी प्रत्येक नाखून तो अपने आप में समक्ष है उस तरीके से पूर्ण है, उनको अन्य नाखूनों की अन्य कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ये इतने बड़े बड़े असुर है उनको नाश करने वाला है। तो ये असुर कौन है, इंद्र के शत्रु असुर है, भले ही इंद्र के शत्रु असुर है, श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं इंद्र जो है हमारे मन के अभिमान देवता माना जाता है, वैसे मन के अधिष्ठात देवता जो है वो चंद्रमा है, लेकिन मन के अभिमान देवता जो है इंद्र है। वैसे हमारे शरीर में प्रत्येक अंग है उसका अधिष्ठात देव होते हैं और अभिमान देव होते हैं, ये जो इंद्र जो है अभिमान देव है मन का। तुम्हारे मन में जो निवास करने वाले जो शत्रु है वही है, कौन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, ये जो छह प्रकार के शत्रु जो हमारे मन में निवास करते हैं इसको नाश करने वाले नाखून है। इससे भगवान नरसिंहदेव का स्तुति या नकस्तुति, जो भी भगवान के नाखून को स्मरण मात्र करता है उनके हृदय में जितने भी ये अनर्थ है अवांछित चीजें हैं उनको वो नाश हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि नरसिंहदेव जो है वो भक्ति में विघ्नों को नाश करने वाले हैं, तो हम सोचते हैं कि भक्ति में विघ्न क्या है, ये व्यक्ति मेरा भक्ति में विघ्न है, वो व्यक्ति मेरा भक्ति में विघ्न है, ये वस्तु जो है मेरे भक्ति में विघ्न है, हाँ ये चीज है ये परिस्थिति मेरे भक्ति में विघ्न है। भक्ति में विघ्न जो है आपके शरीर के बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। तो भक्ति में विघ्नों को नाश करने का अर्थ क्या है, हे भगवान मेरे हृदय में मेरे अनर्थ जो है उसको नाश करो। समस्या जो है अन्य लोगों में नहीं है, अन्य वस्तुओं में नहीं, अन्य परिस्थिति में नहीं है, समस्या हमारे हृदय में है, उसका समाधान करते हैं, समाधान करते हैं नरसिंहदेव, कैसे, उनके नाखून के द्वारा। अस्तित्व में हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है इसी को मारना है, हमारी जो शक्ति के द्वारा बलबूते है उसको मार नहीं सकते हम, केवल नरसिंहदेव ही एकमात्र व्यक्ति जो इन अवांछित चीजों को वो मार सकते, खत्म कर सकते, बहुत शक्तिशाली मदमद है। जो हाथी है वो कुछ भी कर सकता है, केवल कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मदमद हाथी हो तो वो उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता है, उनको कोई कंट्रोल में ही ला सकता है, केवल भगवान ही उनको कंट्रोल में ला सकते, उसको मार सकते हैं। इससे कहा गया प्रत्येक वज्रायुधा, ऐसा उनकी शक्ति है। बाद में दूसरे लाइन में या दूसरे बाकी दो लाइन में आखिरी दो लाइन में जो अभिष्ट सिद्धि है, अभिष्ट जो कृष्ण प्रेम है उसको प्रदान करने वाले हैं, क्या है वो, श्रीमद कंठीर वाक्य प्रतत सुनकराचारिताराति दूर प्रदस्तद्वांत प्रवितत मनसा भाविता नाकि वृंदः। तो इस श्लोक में कहा गया है कि किस प्रकार श्रीमद कंठीर वाक्य, श्रीमद कंठीरवास, कंठीरवास करते ये सिंह, ओ श्रीमत यानी लक्ष्मी देवी के साथ में है, लक्ष्मी देवी की युक्त है, श्रीमत संपूर्ण तरीके से सारे प्रकार के ऐश्वर्य, सारे प्रकार के सिद्धि, सब कुछ प्रदान करने की क्षमता नरसिंहदेव में है। इसलिए श्रीमत कंठीरवास्य प्रतत सुनकरा दारिता राति दूरहा प्रदस्तद्वांत शांत प्रवितत मनसा भाविता नाकी वृंदई, भाविता नाकी वृंदई। नाकी वृंदई के अर्थ है सारे देवता लोग, सारे देवता लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का शरण ले रहे हैं। किसका, किस रूप में, किसके द्वारा शरण ले रहे हैं, श्रीमत। श्रीमत शब्द का अर्थ अभी कहा कि लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी के द्वारा भगवान का सब लोग शरण ले रहे हैं। तो इस प्रकार इस स्तोत्र में दोनों अभिष्ट सिद्धि या वांछित का वस्तुओं का नाश करना, अभिष्ट वस्तु का प्राप्ति, ये दोनों चीजों को इधर वर्णन किया जा रहा है। तो श्रीपाद भद्वाचार्य ये स्तोत्र के द्वारा नाकी वृंदे ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जितने भी देवता है वो सारे देवता भगवान से शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। तो वो शक्ति प्रदान करने वाले कौन है, तो शक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब शक्ति प्रदान करते हैं तो वो भले ही प्रदान करने वाले हैं, लेकिन शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप कौन है, श्रीमती राधारानी। तो श्रीमती राधारानी का विस्तार है लक्ष्मी जी। जब भी नारायण या नरसिंहदेव लक्ष्मी के साथ में रहते हैं तो सारे देवता लोग आते हैं, अपना अपना कार्यों को वर्णन करते हैं, मैं ये कार्य करना चाहता हूं। तब लक्ष्मी जी नरसिंहदेव की ओर नजर डालती है, तो नरसिंहदेव कहते हैं ठीक है आप उनको दो, तो लक्ष्मी जी प्रदान करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नरसिंहदेव वो कहते हैं आपको नहीं देना है शक्ति, मैं प्रसन्न नहीं हूं। तब सब लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए नरसिंहदेव का एक विग्रह का नाम है अहोबिलम है मालोला। मालोला मतलब माँ से, माँ का प्रेम से, माँ का प्रेम की वजह से, या माँ के प्रेम के वश में है। यानी किसके माँ के प्रेम के वश में है, हमारी माँ। हमारी माँ कौन है, लक्ष्मी जी। यानी लक्ष्मी जी के प्रेम के वशीभूत हुए हुए नरसिंहदेव है। भले नरसिंहदेव पूर्ण तरीके से शक्तिशाली है, इतने बड़े हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को वध किया, और अनेकों अनेकों खारी हिरण्यकशिपु को नहीं, अनेकों असुरों को वध किया। ऐसा नहीं कि नरसिंहदेव का प्राकट्य केवल हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए हुआ था, अनेकों जगह अनेकों अनेकों असुरों को वध करने के लिए हुआ, अनेकों प्रकार के जो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए नरसिंहदेव। ये प्रसिद्ध लीला है, इसलिए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सारे देवता लोग, इतना हद तक कि ब्रह्मा जी भी नरसिंहदेव जी से प्रार्थना किए, नरसिंहदेव प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि नरसिंहदेव एक ऐसे भगवान है, बहुत मूडी भगवान है, इसे मूडी पर्सन। उनका वो क्रोध भी रहता है, शांत भी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन वो कब प्रसन्न होते हैं, कब अप्रसन्न हो जाते हैं, कब गुस्सा करते हैं, कब वो शांत रहते हैं, कब हंसते हैं, कब रोते हैं, ये हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। जैसे बहुत शक्तिशाली होता है ना, वो ऐसे मूडी पर्सन रहता है, देयर ऑलवेज लाइक दैट। लेकिन ये नरसिंहदेव का मूड, ब्रह्मा जी बहुत प्रार्थना किए थे अहोबिलम में, इतना प्रार्थना करने के बाद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नहीं 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 बस अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो सब ब्रह्मा जी ने क्या किया, उधर जाके लक्ष्मी जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी कहा कि आप चिंता मत करो, मैं जाती हूं। तो लक्ष्मी जी गई तो नरसिंहदेव को ऐसा बड़े प्रेम से देखने लगी। नरसिंह ने बोला क्या चाहिए तुमको, ब्रह्मा जी को आप अपना वरदान प्रदान करो, वैसे तो मुझे प्रदान नहीं करना था, लेकिन आप बोल रहे जैसे प्रदान करता हूं। तो इसलिए सारे देवता लोग जो है, जब नरसिंहदेव अकेले बैठे रहते तो कभी मिलने के लिए नहीं जाते, जब साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं तभी जाते हैं। तो इसलिए इधर कहा गया है श्री नाग वृंदेही श्रीमद कंठीरवास्य प्रतत सुनकरा धारिता रातिदूर प्रद्वस्तद्वांत शांत पवितत मनसा भाविता नाकिवृंदेही भाविता नाकिवृंदेही। सब लोग उनको अभी अगले श्लोक में श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं लक्ष्मीकांत समन्ततो विकलयन् नैवेश दुस्ते समम् पश्यामुत्तम वस्तु दूरतरतो पास्तम रसो योष्टमः यद्रोशोत्कर दक्षनेत्र कुटिल प्रांतोदिताग्नि स्रहत् कद्योतोपम विष्पुलिंग बसिता ब्रह्मेश शक्रोत्करा। ये श्लोक में लक्ष्मीकांत श्रीपाद मध्वाचार्य की स्थिति के ऊपर व्याख्या करते हुए कांत लक्ष्मी कांत लक्ष्मी के प्रिय है। कांत का अर्थ क्या है तो एक बहुत सुंदर विवेचना है। एक बार सारे गोपियां आई थी कृष्ण के पास दास लीला के समय कृष्ण ने बांसुरी बजाया था तो सब लोग एकदम बिल्कुल प्रेम विवश होके कृष्ण का उनका चित्त पूर्ण आकर्षित कर सब आया। तब कृष्ण आए आप लोग क्यों आए इधर रात को आना नहीं चाहिए आप सब लोग वापस जाओ आपके कांत का सेवा करो कांत कांत का सेवा करो कांत मतलब जो उनसे प्रिय होते हैं पति है उनके उनको सेवा करना चाहिए जाओ आप सब लोग जाओ अपना प्रिय पति को सेवा करो। और जैसे इस प्रकार उन लोगों ने कहा कृष्ण ने कहा गोपियों ने कहा हम तो कांत के पास ही आए हैं। तब अस्तित्व में कांत का जो शब्द है इसका दो अर्थ है। एक है का अर्थ है कि सुख अंत का अर्थ है कि अंत करना। तो कांत का पहला अर्थ यह है जो हमारे सारे सुखों को अंत करने वाला। तो गोपियां कहती हैं हमारे पति जो है हमारे सारे सुख को अंत कर दिया इसलिए आपके पास आए। तो कृष्ण ने पूछा तो कहीं और जाना चाहिए आपके पतियों ने आपका सारा सुख अंत कर दिया तो कहीं मेरे पास क्यों आए क्योंकि आप भी तो कांत है क्योंकि आपका जो सुख का सीमा हो आप अंत का और एक अर्थ क्या है सीमा है आप सुख का सीमा हो यू आर द एंड ऑफ ऑल हैप्पीनेस। अर्थ क्या है कि जितना सुख इस संसार में है वो सारा सुख जितना भी है वो सुख का कोई अगर अंत कुछ है यानी उसका कुछ हाइट है कुछ हद है तो आपके पास ही मिलेगा इसलिए आपके पास आए। इसे गोपियां बहुत इंटेलिजेंट है। इसी प्रकार इधर लक्ष्मीकांत ये शब्द के सारा सूचित किया गया है। श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि भले ही कृष्ण कितने बुद्धिमान क्यों हो कितने भी वाचस् शक्ति में कितने ही पटु क्यों ना हो किस प्रकार गोपियों के वश में आ जाते हैं उनके शब्दों के वश में आ जाते हैं इसलिए लक्ष्मीकांत तो इसलिए कहा गया है। हमेशा श्री प्रभुपाद जी बात कहते हैं कि कृष्णा इज ए हैंड पेग्ड हस्बैंड हैंड पेग्ड मतलब जोरू का गुलाम है। ये भले ही हमारे संप्रदाय में भी कहीं कोई भी संप्रदाय में हो कृष्ण को प्राप्त करना है केवल राधारानी या लक्ष्मी जी के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह समन्ततोपि विकलयन् नैवेश दुस्ते समम् यानी नरसिंह देव के समान इस जगत में ऐसा कोई विग्रह नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है चाहे कोई भी शास्त्र लीजिए और कहीं भी जाइए उनके समान कोई नहीं है। विकलयन नैवेश दुस्ते समम पश्याम उत्तम वस्तु पश्याम उत्तम वस्तु दूर तर कितना दूर दूर तक देखने पर भी उनके समान शक्तिशाली ऐश्वर्यपूर्ण कोई व्यक्ति हमको प्राप्त नहीं होता। पश्याम उत्तम वस्तु दूर कर दो पास्तम रसो योष्टमः क्यों क्योंकि पास्तम रसो योष्टमः ये मूर्तिमान स्वरूप है लक्ष्मी नरसिंह किसके मूर्तिमान स्वरूप है वो है अष्टम रसः। ये जो अष्टम रस है उसके विषय में थोड़ा सा जानना जरूरी है। अष्टम रस वैसे तो छह रस हैं तीखा मीठा इत्यादि तो ये छह रसों में आठवां रस कहां से आ गया तो इसके लिए हमको थोड़ा वैदिक मंत्रों में जाना होगा। ऋग्वेद में कहा गया है कि अष्टम रस के विषय में तो रस ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम जीवित होते हैं। तो सबसे पहला रस जो है ये पृथ्वी है, इसलिए कहा गया है रसम पृथ्वी ही पुण्योगंध पृथिव्याम च, पुण्योगंध पृथिव्याम च। सबसे पहला रस है पृथ्वी, जो हमारे जीवन जीने के लिए सारा रस जो है भगवान ने पृथ्वी में डाला, इसलिए सबसे पहला रस को, प्रथम रस को पृथ्वी माना गया है। तो दूसरा जो रस है पृथ्वी से उत्पन्न हुआ जो पेड़ पौधे इत्यादि है, और तीसरा रस है जो मनुष्य है, जो मनुष्य जो है मनुष्य की जीवन किसकी वजह से हमारे जीवन, वो हम आहार ग्रहण करते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, जो पेड़ पौधे से उत्पन्न हुआ जो अन्न है, सॉरी तीसरा जो अन्न है, अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न से हमारा जीवन चलता है, इसलिए पुरुष को रस माना गया है, चौथा रस माना गया है। जो पांचवा जो रस है वो है पुरुष से उत्पन्न हुआ वाक्य, उसको रस माना गया है। छठा रस जो है उन वाक्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है, या सारे प्रकार के वाक्यों में सर्वोच्च वाक्य वेद, वेद वाक्य जिसको ऋग कहा गया है। तो ऋग के बाद जो ऋग्वेद में भी या सारे वेदों में भी सर्वोच्च है वो सामवेद, इसको सातवां रस कहा गया है। और सामवेद में जो मुख्य जो रस है वो ओम शब्द है, जिसको महावाक्य कहा गया है, इसलिए ओम को अष्टम रस कहा गया है। तो इधर इस तरीके से रसो अष्टम कहा गया है। यद्रोक्षोत्कर दक्ष नेत्र कुटिल प्रांतोति दाग्नि, दक्ष नेत्र कुटिल प्रांतोति दाग्नि, यानी नरसिंहदेव के आंखों की जो कोने से तिरछी नजर से खाली उनका जो भ्रुकुटियों हिलाने की वजह से, आंखों हिलाने से जितने भी ब्रह्म इंद्र रुद्र जितने भी देवता है सब लोग कांपना शुरू करते, सब लोग भयभीत हो जाते थे। खद्योतोपम विश्पुलिंग भसिता, खद्योतोपम उनके जो आंखों का दृष्टि नजर जो है वो किसके बराबर है, खद्य मतलब तलवार, तलवार के बराबर है। विश्पुलिंग भसिता, थोड़ा सा अगर वो लोग गड़बड़ करते हैं तो उनको उनको जला सकते हैं, उनको जलाने की शक्ति है, भस्म करने की शक्ति है। भाविता ब्रह्मेश चक्रोत्करा, ब्रह्मेश चक्रोत्करा ब्रह्मा ईश मतलब शिवजी, चक्रोत्करा जितने भी चक्र इंद्र जी, इंद्र है ब्रह्मा इंद्र, सारे जितने भी लोग हैं नरसिंहदेव के खाली उनके ब्रुकुटियों का हिलने मात्र से हिलना शुरू कर देते या नाचना शुरू कर देते, यानी सारे देवताओं की शक्ति भी इनके ऊपर आधारित है करके श्रीपद मध्वाचार्य नकस्तुति में कहते हैं। अभी हम ये नरसिंहदेव के जो अलग अलग प्रकार के नाम हैं उन नामों को थोड़ा सा चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो नरसिंहदेव के वैसे द्वादश नाम स्त्रोत्र है, अष्टोत्र नाम स्त्रोत्र है, और सहस्त्र नाम स्त्रोत्र भी है। सोचा था कि सहस्त्र नाम स्त्रोत्र किया जाए लेकिन बहुत लंबा है, हजार नाम है तो उनको उच्चारण करने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए सोचा कि केवल ये द्वादश नाम स्त्रोत्र है और अष्टोत्र नाम स्त्रोत्र, ये दोनों को चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला द्वादश नाम स्त्रोत्र मेरे बाद उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। प्रथमस्तु महाज्वालो द्वितीयस्तु उग्रकेसरी तृतीयः कृष्णपिङ्गाक्ष चतुर्थस्तु विदारणा। प्रथमस्तु महाज्वालो, महाज्वालो महाप्रज्वाल प्रकाशित करने वाले हैं। दूसरे है द्वितीयस्तु उग्र केसरी, उग्र केसरी उग्र सिंह है, और तृतीयस्तु तीसरा क्या है कृष्ण पिंगाक्ष, कृष्ण पिंगाक्ष का अर्थ है उनका आंख जो है भगवान के नरसिंहदेव के वो ब्राउन कलर के है, कृष्ण पिंगाक्ष काला भी नहीं है। उसको क्या बोलते हैं ब्राउन को, क्या बोलेंगे हिंदी में, काली बुरा, बुरे कलर, बुरा कलर, भा भूरा, ठीक है जो भी है, ब्राउन कलर समझ, ब्राउन कलर के हैं। और तृतीयस्तु कृष्ण पिंगाक्ष, चतुर्दस्तु विदारणा, विदारण मतलब जो फाड़ने वाले, इससे थोड़ा ध्यान रखे सामने जाने से पहले, जा भी सकते आपके हृदय में अंदर जो अनर्थ है उसको नाश करे। तो 15 मिनट पहले बता दीजिए प्रो जी, आपको शुरू करना है तो 15 मिनट बिफोर, हाँ शुरू कीजिए लेकिन 15 मिनट नोटिस बाद। पंचमस्य पंचमश्चैव षट् षट् षट्कप्स्तु मर्दनः, षट्कप्स्तु कशिपुमर्दनः, सप्तमो दैत्यहन्ता च, अष्टमो दीनवल्लभा। पंचमो पंचमश्चैव, उनके पांच मुख है, नरसिंह के पांच मुख है, he's got five head, one has got five heads and five mouth, पांच मुख वाले एक विग्रह है नरसिंहदेव का, पांच मुख वाले विग्रह है। देखिए पांच मुख वाले विग्रह नरसिंहदेव का मूल क्या है, ये मूल ये हैं, जब शिवजी आए थे महोबिलम में, उन्होंने एक स्तोत्र का मंत्र राज पद स्त्रोत्रम को उन्होंने उच्चारण किया और नरसिंहदेव बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके शिवजी को कहा आपको क्या वरदान चाहिए, शिवजी ने कहा बस आपके साथ में मुझे रखिए और कोई वरदान नहीं चाहिए। तो नरसिंहदेव ने कहा कुछ सेवा नहीं करोगे, तो आप जैसा बोलेंगे ऐसा सेवा करोगे। तब उन्होंने कहा ठीक है तो आप मेरी धाम का रक्षा करो, जहां जहां विष्णु का क्षेत्र है, वैष्णव क्षेत्र है, उधर आप उसके द्वारपाल बनेंगे, उसका रक्षक बनेंगे। तो शिवजी ने कहा मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाता हूं, आपकी रक्षा कैसे करूं। तो नरसिंहदेव ने कहा अस्तित्व में मेरा कार्य है, जहां जहां कोई भी विष्णु मंदिर बनता है, विष्णु क्षेत्र बनता है, उसका रक्षा जो है मैं करता हूं। जब शिलान्यास होता है उसके बाद जब मंदिर का ओपनिंग भी होता है, उस समय नरसिंहदेव का आवाहन करके पूरा ये जो मंदिर का दिग्बंधन किया जाता है, दिग्बंधन मतलब जैसे इस स्ट्रक्चर को हानि ना हो, यानी उससे कोई नुकसान ना हो, जैसे कोई बिजली चमकता है या कोई प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन होता है ना, ये जो सूक्ष्म प्रोटेक्शन जो है उसकी रक्षा के लिए नरसिंहदेव का आह्वान किया जाता है। तो नरसिंहदेव ने कहा ठीक है मैं ही करता हूं तो मेरा काम तुमको सौंप दूंगा, चलो तुम ले लो। इसलिए जब अहोबिलम जाएंगे उधर एक विग्रह है नव नरसिंह में, जो सबसे मुश्किल चढ़ना है एक जगह है, वो उसका नाम है, वैसे तो सबसे मुश्किल चढ़ना तो उग्र स्तंभ है, लेकिन ज्वाल नरसिंह जिस जगह पे बैठ के नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मारा था, वो कौन सा था, हिरण्यकशिपु का अंतपुर का उसको क्या बोलते हैं बीच वाला, चौकट, चौकट था वो, चौकट के ऊपर नरसिंहदेव बैठे हैं, वो दूर से देखेंगे शिवलिंग जैसा लगता है, नजदीक में लगेंगे ऐसा लगता है ठीक है ये तो ये ज्वाल नरसिंह ये, लेकिन उधर शिवजी को ज्वाल नरसिंह ने दिया था वरदान दिया था, ठीक है आप जहां जहां मेरा मंदिर है, जहां जहां मेरा क्षेत्र है, उधर जाके आप रक्षा करो। इसलिए आप जहां भी देखो, जहां विष्णु का मंदिर है उधर शिवजी का मंदिर होना निश्चित रूप में रहेगा, क्यों, शिवजी का उधर द्वारपाल का उन्होंने सेवा प्रदान किया था। तो शिवजी कौन है, कितने मुख है शिवजी के, तो रक्षक को पांच मुख होना चाहिए शुड हैव फाइव फेसेस, इसलिए हम सिक्योरिटी रखते कम से कम पांच रखना चाहिए वैसे एक व्यक्ति को पांच मुख नहीं हो सकता है, यानी उनको हमेशा सतर्क होना चाहिए कोई गड़बड़ वाला व्यक्ति अंदर ना आए। तो इसलिए वैश्व सिद्धांत के जब हम गोलोक वृंदावन जाते भी है, गोलोक वृंदावन के गेट के पास शिवजी है, वो तो अलग प्रकार के शिवजी है, तो भगवान के सेम विस्तार है, जो क्वालिफाइड व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं, अनक्वालिफाइड व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति अंदर, अयोग्य व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए अंदर जाने के लिए शिवजी का भी कृपा की आवश्यकता है, तो इसलिए नरसिंहदेव का पांच मुख इसलिए हैं भक्तों को गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करने का, वैकुंठ में प्रवेश करने का योग्यता प्रदान करने की स्वरूप है। इससे उनको पांच मुख है। तो पांच मुख के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि ये समझ लीजिए उनका भी पांच मुख है। क्यों? वो शिवजी से कनेक्शन है, उनका रक्षक के साथ कनेक्शन है। इज अ प्रोटेक्टर एंड ही डजंट अलो अनक्वालिफाइड पीपल टू एंटर इनटू द धाम। बाद में शटसु मतलब शटाशिजिया नाम क्या है, कशिपु मर्दना, कशिपु हिरण्य कशिपु को मारने वाले। सातवां कौन से, दैत्य हंताचा, जो दैत्य है उसको मारने वाले। अष्टमो दीनवत्सला, दीन लोगों को वो उनके प्रति वात्सल्य की भावना रहता है। नवमो प्रहल्लाद वरदो, दशमो अनंतहस्तका, एकादशो महारुद्रो, द्वादशः करुणानिधि। नवमो प्रहलाद वरदो, नवमा कौन सा है, प्रहलाद को वरदान देने वाले प्रहलाद वरद। प्रहलाद वरद विग्रह को स्थापना करने वाले स्वयं बालाजी है। जब आप हॉल में कभी जाएंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं, जो नव नरसिंह जो है ओबिलम में, उसके अलावा और एक नरसिंह विग्रह है जिसको जिसकी स्थापना स्वयं बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी ने किया था। तिरुपति बालाजी का जब विवाह हुआ तो जब विवाह होने के बाद ऐसा प्रथा है कि खास करके आंध्र में तो सब लोग जाते हैं तिरुपति जाते हैं, विवाह होने के बाद सबसे पहला उधर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी विवाह करने के लिए बहुत हंगामा किया था, उधार लिया था। चलो उनके पास जाके जाएंगे, थोड़ा सा धन दे के आएंगे ताकि हमारा चले, ऐसा भावना से जाते हैं। जब उनका विवाह हुआ तो पद्मावती ने उनसे पूछा, बालाजी से, सब लोग विवाह होने के बाद हमारे पास आते, हमारा विवाह होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तब वेंकटेश्वर बालाजी ने कहा, चलो हम जाएंगे नरसिंहदेव के पास। तो नरसिंहदेव के पास तो कैसे जाएंगे, मतलब पैदल जाना होगा, थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, हम गाड़ी घोड़ा में जाएंगे उनको पसंद नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है नरसिंहदेव। बहुत तपस्या, हाँ चाहते हैं मतलब बहुत तपस्या करे तभी वो प्रसन्न होते हैं, इससे हमेशा पहाड़ के ओर जाके बैठ जाते हैं। कुछ लोग यही पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों सारे बंदे पहाड़ के ऊपर रहता है, खास करके नरसिंहदेव विग्रह जैसा पहाड़ के ऊपर रहता है। तो बालाजी सब लोग पद्मावती के आगे चलते चलते जा रहे थे, बिना चप्पल के जा रहे थे नरसिंहदेव के दर्शन करने के लिए, नव नरसिंह। तो बीच रास्ते में पद्मावती थक गई, देखिए अब बस मैं थके में नहीं आ सकता हूँ। तो बालाजी उनको उठा के लेके आए, तो जैसे उधर अरोबिलम नजदीक पहुंचे तो उधर उन्होंने देखा कि और भी पहाड़ है, इनको उठा के मैं कहाँ से जाऊं अभी, चला कि इधर ही मैं उनका प्रतिष्ठा करता हूँ विग्रह का। तो उन्होंने विग्रह का प्रतिष्ठा किया और उसका नाम है प्रहलाद वरद। प्रहलाद वरद ये भी बहुत बहुत सुंदर विग्रह है, प्रहलाद वरद विग्रह। जितने भी नरसिंहदेव के विग्रह है सारे विग्रहों में शांत नरसिंह को पूजा जाता है, क्योंकि शांत नरसिंह जो है वरदान देते हैं। लेकिन शांत नरसिंहदेव से सबसे दयालु विग्रह है प्रहलाद वरद। प्रहलाद जी की वजह से ही नरसिंहदेव प्रकट हुए और सारे लोगों को उनने कृपा बरसाया। लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी लोलाय मंगलम, लक्ष्मी नरसिंह विग्रह का विशेषता यह है कि सेवा विग्रह है, यानी वो भगवान लक्ष्मी नरसिंह रूप में सेवा को स्वीकार करते हैं, वर प्रदान वरदान नहीं देते। लेकिन वरदान देने वाले विग्रह केवल प्रहलाद जी बैठे हैं, इसलिए नरसिंहदेव जो है सबको वरदान प्रदान करते हैं। अगर प्रहलाद नरसिंह को अगर कोई पूजा करता है उनको वरदान देना मिलना निश्चित रूप में हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी नरसिंह में हो सकता है कभी हो ना हो, लेकिन ये प्रहलाद वरद। दशमो अनंत हस्तका, अनेकों हाथ है उनके पास। एकादशो महारुद्र, महारुद्र उनका नाम महारुद्र कहा जाता है, जिसे अभी यीशु जी के विषय में संबंध में कहा था ना, श्री नरसिंहदेव का एक नाम है महारुद्र, क्योंकि सारे रुद्रों को नाश करने की शक्ति भी नरसिंहदेव प्रदान करते हैं। द्वादश करुणा के निधि है, करुणा के सागर है नरसिंह देव। आगे अभी हम अष्टोत्तर शता नाम को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये सारे नाम जो है ऐसे साथ में सारे श्लोक पढ़ेंगे और बाद में कुछ नामों के ऊपर विश्लेषण करने के चला सकते हैं। मेरे बाद उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबला उग्रसिंहो महादेव संबदश्चोग्रलोचना रुद्र सर्वबोध श्रीमान् योगानंद त्रिविक्रमः हरिं कोलाहलश्चाक्री विजया जयवर्धना पञ्चानन परं ब्रह्म सागोरो गोरविक्रमः ज्वलं मुगो ज्वलं ज्वलामाली मा ज्वलो महाप्रभो नीतिलाक्षसहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य परन्तपः महादंशस्युद्ध प्रज्ञा चंडकोपी सदाशिवः हिरण्यकनिषूदन दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो मलभद्र सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तिका शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वर विभो भैरवादंबरो दिव्य चाच्युत कविमाधवः अदाक्षजोक्षरो सर्वो वनमारीवरप्रदः विश्वंबरोद्भुतो भाव्य श्री विष्णु पुरुषोत्तमः अनंगास्त्रो नतस्त्रश्च सूर्यो ज्योतिसुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदंष्ट्रो वज्रनको महानन्दो परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणा सर्वतन्त्रमहावाक्य सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्ल शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिपुण्यात्मा आत्मा चण्डविक्रमः वदत्रयो परिपूजश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्को श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाक्योद्विरूपभेत् परमात्मा परं ज्योति निर्गुणश्च निकेशरी परं परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मीनरसिंह सर्वात्मा धीर प्रहलाद पालक। अभी हमने ये नरसिम्ह अष्टोत्तर शत नामों को उच्चारण किया, भगवान के नाम। अभी हम एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, वो है अवो बिल नारसिम्ह स्तोत्र, लक्ष्मी नरसिम्ह करुणारस स्तोत्रम। इसको हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। ये जो लक्ष्मी नरसिम्ह करुणारस स्तोत्रम, ये श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा उच्चारण करने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अंदर ये भौतिक जगत कितना घोर है उसका वर्णन करते हैं श्रीपाद शंकराचार्य। जब हम जितना हद तक ये भौतिक जगत की घोरता को हम अनुभव करेंगे, उतना तीव्रता से न भगवान के लिए प्रार्थना निकलेगी। क्योंकि अगर हम ये अनुभव नहीं है कितना दुख है संसार, तो प्रार्थना के अंदर तीव्रता नहीं आती। इसको नरसिम्ह करावलंब स्तोत्रम भी कहा जाता है। वैसे दो करावलंब स्तोत्र है, ये शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ करावलंब स्तोत्र है। तो मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिएगा। श्रीमत् पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगेन्द्र भोगम निराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम ब्रह्मेन्द्र रुद्रम रुदर्क किरीटकोटि संघटितांग्रिकमलामलकांतिकांत लक्ष्मी लसत्कुछ सरोरुह राजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसारदावदहनाकुल भीषणोरु ज्वालानिभिरदिदद्ध करुरहस्य त्वत्पाद पद्म सरसीं शरणागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसार जाल पतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियात् बडि सागर जशोपमस्य प्रोत्कंपित प्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसार कूपमति घोरमगाधमूलम संप्राप्य दुःख शत सर्प समाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसार भीकर करीन्द्र कराभिघात निष्पीड्य मानव पुष सकला सकलार्थिनाश प्राणपयानभव भीति समाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसार सर्प विषदिग्ध महोग्र तीव्रा दंष्ट्राग्रकोटि परिदष्ट विनष्टमु विनष्टमूर्ते नागारिवाहन सुदाप्ति निवास सौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार वृक्षमगबीजमनन्तकर्म शाकायुतम् कर्णपत्रम् अनङ्गपुष्पम् आयु आरुह्य दुःखपरिणम् पतितम् दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार सागर विशाल कराल काल नक्र ग्रह ग्रसित निग्रह विग्रहस्य व्याधस्य राग निचयोर्मि निचयोर्मि पीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार सागर निमज्जममुह्यमानम् दीनं विलोक्य विभो करुणानि जेमाम् प्रह्लादखेद परिहार कृतावतार लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार गोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रवी विभीकर मृग प्रचुरार्थितस्य आर्तस्य मत्सर निदग्ध सुदुःखितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् बद्वा गलैक्यमपता बहुतर्जम तर्जयन्तः कर्षन्ति यत्र भवपाशशतेर्युतम् माम् एकाकिनाम् परवशचकितम् दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो यज्ञेश यज्ञमधुसूदन विश्वरूप ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्कम् अन्येन सिन्धुतनयामवलम्ब्य तिष्ठन् वामेतरेण वरदाभयपद्मचिह्नम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् अन्धस्य मे हृद्विवेकमहाधनस्य चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेये मोहान्धकारकुहरे विनिपादितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीका व्यासादि भागवत वासादि भागवत पुंगव हृन्निवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम् लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्ज मधुव्रतेन श्रोत्रम् कृतम् शुभकरम् भुवि शंकरेण ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्ति युक्ता ते यान्ति तत्पाद सरोजमखण्डरूपम्। मुझे थोड़ा आदेश आया है कि अभी अभिषेक शुरू होगा और 5-10 मिनट में, लेकिन ये जो श्लोक है अभी हमने जो चर्चा किया, ये स्तोत्र है, बहुत सुंदर स्तोत्र है, खास करके साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं जो व्यक्ति इस स्तोत्रो ये तत् पठन्ति मनुजा हरिभक्ति युक्ता, हरिभक्ति युक्ता बड़े भक्ति भाव से, भगवान नरसिंहदेव की भक्ति भाव से ये पठन्ति रोज पढ़ता है, ते यान्ति पाद सरोज मखंड रूपम, ते यान्ति वो प्रवेश करता है, कहाँ जाता है, भगवान की चरण कमलों को प्राप्त करता है, भगवान के धाम में जाता है। तो ये आपको ये जो पेपर दिया गया आपके पास रख सकते हैं और रोज उसको पढ़ सकते हैं स्तोत्रों को। ऐसे नरसिंहदेव के जो प्राकट्य दिवस के दिन ये पढ़ने से तो हमको शुद्धिकरण होता ही, लेकिन इसको रोज करना चाहिए, खास करके गौड़ी वैष्णव धारा में भक्तिनाथ ठाकुर महान आचार्य हुए वो कहते हैं जब तक नरसिंहदेव का कृपा नहीं होगा तब तक कृष्ण का भजन नहीं हो पाएगा। अस्तित्व में हमको कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है, कृष्ण का भजन करना है, लेकिन वो भजन तभी संभव है जब नरसिंहदेव आके हमारे सर के ऊपर हाथ रखेंगे, कहेंगे चिंता मत करो मैं हूं तुम भजन करो। यानी कृष्ण का भजन या हरे कृष्ण महामंत्र जप हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो, या भगवान के लिए कुकिंग भी करना हो, हमको साथ में नरसिंहदेव है ये विश्वास के साथ करना होगा। एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करते हुए श्री नवद्वीप भाव तरंग में, वह आप कीर्तन कर सकते हैं, मतलब करताल बजा सकते हैं जटा के समय, मेरे हाथ में पकड़ के कर रहे हैं मृदंग बजा करताल। तो ये भजन का अर्थ को थोड़ा विश्लेषण करूंगा, मुझे 4:45 बोला है, 4:45 बोला है तो मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ। ये दुष्ट हृदय कामा अतिरिपुचाया कुटनाति प्रतिष्ठा सत्य सदराय हृदय हृदय सुधानार कृष्णे रावसाना नसे माचरणे मोरा एतो करुणा कांदियत नरसिंहापदे मागी वो कहाना निरापाद नावदीपे जुगल भजाना भया भय भयायना दशाने से हारी
रसना ही बो कबे मोरा दया करी यदापि भस्याना यदापि विषाणा मूर्ति दुष्टा जीव प्राति प्रहलाद कृष्णा भक्ता जने भद्राति कबेवा प्रसन्न कबेवा प्रसन्ना होए सबे पावचाने निर्भया करीबे ये मुढ़ा किंचाने स्वच्छंदे बसियो हे वत्ता गौरांगा धामे जुगाला बजाना हो रति हो नामे ममा भक्त कृपा बले विघ्ना जबे दूरा शुद्धा चित्ते भजो राधा कृष्ण रस पूरा ये बोले कबे मोरा मस्तक ऊपर शिवाय श्री चरणे हस्ते धरि विश्वरा हम्याई जुगाला प्रेमे सात्विक विकारे धराया तुटी बयामी श्री नरसिंह द्वारे
धरयो लुटिबो अमी श्री नरसिंह द्वारे अमी जुगल प्रेमे सात्विक विकारे धरया लुटिबो अमी श्री नरसिंह द्वारे नरसिंह देव के मंदिर के पास जाऊंगा नरसिंह देव के चरण कमलों के पास जाके इधर मैं गिर पड़ के मैं ये प्रार्थना करूंगा क्या प्रार्थना करूंगा सबसे पहला भक्तिनाथ ठाकुर ये कहते हैं ये दुष्ट हृदय काम अतिरूप छाय ये दुष्ट हृदय जो है इसके अंदर छह रिपु है कूटनाति प्रतिष्ठा सत्या सदा राय हमेशा ये रहा है कूटनाति इत्यादि इत्यादि अनेकों दुष्ट चीजें हृदय शोधन आर कृष्ण वसन नरसिंह चरण मोरे ये कर्म इसलिए जब तक ये चीजें मेरे हृदय में कृष्ण नहीं आएंगे इससे नरसिंह देव क्या करो ये सबसे पहले आप ये सब चीजें निकालो क्योंकि कृष्ण को इधर बैठना है तो आप आके मुझे करना होगा ये निकालना होगा कांदिया नरसिंह पदे मैं रो रहा हूं नरसिंह के चरणों के प्रति मांगी वो कहाना मैं मांग रहा हूं मैं क्या मांग रहा हूं एक एक चीज मांग रहा हूं आपसे एक ही प्रार्थना है निरपदे नवद्वीपे युगलज भजन नवद्वीप में बैठ के मैं राधा कृष्ण का भजन करूं ये चैतन्य महाप्रभु नहीं मांग रहे बद्रीनाथ ठाकुर किससे मांग रहे नरसिंहदेव से मांग रहे निरवधि भजन वैसे तो नरसिंहदेव का भजन नहीं करना है हमको किसको भजन करना है राधा कृष्ण का भजन करना है कहां करना है नवद्वीप करना है लेकिन वो तभी संभव है नरसिंहदेव जब आप ये छह रूप को निकाल निवास करोगे जब आप अनुमति दोगे तभी हम भजन कर सकते हैं भया भया पाए यनार दर्शने से हरि प्रसन्न होइबे कबे मोरा दया करी हे कब नरसिंह आप मेरे बहुत प्रसन्न होके मेरे हृदय में इतने प्रकार के जो अनर्थ है वो नाश करोगे यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति दुष्ट जीवों के प्रति आप बहुत भीषण बहुत उग्र हो लेकिन प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त प्रहलाद जैसे आदि अन्य कृष्ण भक्तों के साथ में, जने भद्र अति अति प्रेम है आपके प्रति, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कबेवा प्रसन्न होए ये सा कृपा वचने, मेरे से आप कब आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे। निर्भय करीबे ये मूड अकिंचन, ये मूड है अकिंचन है, इनको निर्भयता कब प्रदान करोगे। जब भजन करना है, होता है ना उस समय बहुत सारा भय आता है, क्या होगा वो क्या होगा, उसने ऐसा कहा, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, ये सब भय को नाश करने वाले नरसिंहदेव। इसलिए स्वच्छंदे वसियो ये हस्त श्रीरंग, हे नरसिंह आप मुझे ये बात आप कब कहोगे, मेरे बाजू में आओगे, ये बात आपको मुझे कहना है। मैं आशा करता हूं आप ये बात कब कहो मेरे बाजू में आके, तो मेरे बाजू में आपको बैठा आप मेरे बाजू में आके बैठोगे, आपके हाथ को मेरे ऊपर रखोगे और ये बात कहोगे नवद्वीप में बैठो। बैठ के क्या करो, राधा कृष्ण के प्रति आप भजन करो, नाम में रुचि रखो, जुगला भजने हो रति नामे, नाम में रति रखो। बहुत सारे लोगों ने बोला लेकिन नरसिंह आप बोलेंगे ना, कम से कम भाई के अनुसार तो करूंगा, क्योंकि अगर किसी को बोलेंगे ना, हमारा मन इतना दुष्ट है, दुष्ट बच्चा होता है ना, उसको प्रेम से बोलने से नहीं होता है, वो और चढ़ जाता है और उल्टा करता है, तो दुष्ट बच्चे को छड़ी दिखाएंगे ना डर के मारे करता है। अत्यंत में हमारा चित्त ऐसा हो चुका है, इतना दुष्ट हो चुका है, रिक्वेस्ट करेंगे प्रेम से भक्ति करो, भजन करो, जप करो, वो सुनता नहीं है, नहीं करोगे तब तो सुनता है। इसलिए हे नरसिंह देव आप आके मुझे कब कहोगे, वेल आर यू गोइंग टू टेल दिस थिंग। मम भक्त कृपा बले विघ्न जब दूर, भक्तों की कृपा से तुम्हारा विघ्न दूर हो जाएगा, इससे भक्तों को निंदा मत करो, भक्तों से दूर मत जाओ, भक्तों को साथ में रहने से विघ्न दूर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नरसिंह देव का अगर कृपा प्राप्त करना है, आप सोचोगे खाली नरसिंह देव भजन करोगे विघ्न दूर हो जाएंगे, नहीं होगा, भक्तों के द्वारा ही नरसिंहदेव विघ्न दूर करते हैं। एक बार इसके ओर प्रवचन नहीं रहता, एक भक्ति का प्रभु जी मुझे ऐसा है दूसरा भक्ति मेरे भक्ति में विघ्न है, लेकिन नरसिंहदेव जो है भक्तों के द्वारा ही विघ्न दूर करते हैं। शुद्ध चित्ते भजे राधा कृष्ण रस पूरा, शुद्ध चित्त में राधा कृष्ण का रस का स्वादन करो। इस प्रकार ई बोली कबे मोरे मस्तक ऊपर, ये बोलते हुए मेरे मस्तक मेरे सर के ऊपर, शिवाय श्री चरणे हस्ते धरिवेश्वरे, कब आप ये अपने हाथ को अपने चरणों को मेरे सर के ऊपर रखेंगे। हमारे जुगल प्रेम है सात्विक विकार है, जुगल प्रेम राधा कृष्ण प्रेम में सात्विक विकार का अनुभव करते हुए धरिया लोटी बो, मैं आके आपके मंदिर के सामने लौटते हुए धरिया रोटी बो लोटी बो अमी श्री नरसिंह द्वारे, नरसिंह चैत्र नरसिंह देव के द्वार के आप रूप में ऐसा रो रहा हूं। ये भक्तिनाथ ठाकुर ने नरसिंह देव को कैसे भजन करना चाहिए उसका उन्होंने हमको परिचय दिया। आज प्रार्थना करना चाहिए नरसिंह देव से, सारा विघ्न दूर हो जाए, हमारा भजन में राधा कृष्ण प्रेम में हम प्रफुल्लित हो जाए, साथ साथ में सारे भक्तों से को प्रार्थना करना चाहिए कि अभी हमारा मंदिर शीघ्र ही ओपनिंग होने वाला है, उसके लिए भी नरसिंह देव चाहिए है कि नहीं, नरसिंह देव की कृपा चाहिए, नरसिंह देव का प्राकट्य चाहिए। इस प्रकार नरसिंह देव प्रकट होके सारे विघ्नों को नाश किया और प्रहलाद को वरदान प्रदान किया, और हमारे जो भी मंदिर कार्य में विघ्न आ रहे हो सारे विघ्नों को नाश करके, और हमारे अभिष्ट वांछा जो भी मंदिर का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए, उसके लिए सारे भक्तों को तीव्र प्रार्थना करना चाहिए, तीव्र प्रार्थना करना भी चाहिए और नरसिंह देव को भी कहना चाहिए। आज आज जैसे मंदिर जब तक पूरा नहीं होगा, ओपनिंग नहीं होगा, आप आके इधर प्रतिष्ठित नहीं होंगे, राधा कृष्ण का नए मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं होगा, तब तक रोज नरसिंह देव आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, आपको याद करूंगा, आपको मुझे याद करना होगा और कुछ ना कुछ मेरे हाथों से कुछ ना कुछ कराना होगा। हाँ, असल में शक्ति जो है प्रदान करने वाला नरसिंहदेव है, उनका सेवा का भी शक्ति वही देते हैं, तो भगवान की सेवा अभी अत्यंत आवश्यक है, बहुत सारा धन की आवश्यकता है, तो उन सबको इकट्ठा करना है तो हमको शक्ति चाहिए, तो आप प्रार्थना कीजिए कि नरसिंहदेव आपको शक्ति प्रदान करे ताकि घर घर में जाके आज से हर रोज कम से कम 10-15 लोगों से रोज मिलना है और सबको भगवान की सेवा में लगाने का उत्साह प्रेरणा देना है। इसके द्वारा आज प्रार्थना करेंगे, तीव्र तरीके से नरसिंहदेव का अभिषेक दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण, नरसिंहदेव भगवान की।